एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार श्रोताओं, आज हम एक ऐसी किताब के पन्ने पलट रहे हैं जिसने युद्ध, रणनीति और यहां तक कि राजनीति की हमारी समझ पर एक गहरी छाप छोड़ी है। कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ की ऑन वॉर,
हाँ, या जर्मन में कहें तो वॉर्म क्रीग, जिसका मतलब है युद्ध पर।
बिल्कुल।
नमस्कार। अब शायद कुछ लोग सोचें कि भाई 200 साल पुरानी किताब युद्ध पर लिखी हुई आज क्यों जरूरी है भला।
हाँ, ये सवाल तो आता है दिमाग में,
पर यही तो कमाल की बात है। क्लॉज़विट्ज़ के जो विचार है ना, वो सिर्फ फौजियों या हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है।
सही कहा।
ये हमें सिखाते हैं कि ये जो अनिश्चितता भरी दुनिया है, इसमें बड़े लक्ष्य कैसे साधें, चाहे वो दफ्तर का कोई प्रोजेक्ट हो या जीवन की कोई चुनौती। बिल्कुल। तो इस ज्ञान गोष्ठी का इरादा यही है कि क्लॉज़विट्ज़ के सबसे जरूरी और कभी कभी थोड़े चौंकाने वाले विचारों को आसान भाषा में समझें।
हाँ, और देखें कि आज भी कैसे काम के हैं।
हाँ, न सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बल्कि शायद बिजनेस में और हमारे रोज के फैसलों में भी।
तो चलिए शुरू करते हैं ये विचार यात्रा।
तो सबसे पहले, ये कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ थे कौन आखिर?
हाँ, ये जानना जरूरी है।
उनका जन्म हुआ था 1780 में प्रशिया में, और वो सिर्फ कोई किताबी कीड़े नहीं थे बल्कि एक एक्सपीरियंस सैनिक थे,
अनुभवी सैनिक।
हाँ, जिन्होंने वो नेपोलियन के जमाने के जो तूफानी युद्ध थे ना, उन्हें अपनी आंखों से देखा था, भोगा था।
सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में आर्मी में भर्ती हो गए।
कमाल है।
और उन्होंने उस दौर में लड़ाई लड़ी जब युद्ध का पूरा तरीका ही बदल रहा था। वो पुराने जमाने के राजाओं वाले छोटे मोटे युद्ध नहीं।
हाँ, वो कैबिनेट वॉर्स देने कहते थे। हाँ, उनसे हटकर अब पूरे के पूरे देश आपस में भिड़ रहे थे बड़े पैमाने पर। उन्होंने 1806 की वो भयानक हार देखी जेना ऑस्टीट्स की, और 1812 का वो मुश्किल रूसी अभियान, ये सब उन्होंने खुद महसूस किया। ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये उनकी सोच की एकदम नींव बनी।
हाँ, और यही बात उन्हें खास बनाती है। वो युद्ध की असलियत को जानते थे, मैदान की धूल, सैनिकों की थकान, डर, और जिसे वो कहते हैं घर्षण, फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन, हाँ।
मतलब वो अनगिनत छोटी छोटी रुकावटें, वो सब उन्होंने करीब से देखा था। और साथ ही वो बर्लिन के उस मशहूर प्रशियन वॉर कॉलेज के डायरेक्टर भी रहे,
क्रीग्स एकेडमी। हाँ
हाँ, तो उनमें अनुभव और विश्लेषण दोनों का एक गजब का मेल था।
और ऑन वॉर इसी जिंदगी भर के अनुभव और सोच का नतीजा है। इसे लिखने में उन्हें 10 साल से ज्यादा लगे। अफसोस यह है कि ये किताब उनके जीते जी पूरी नहीं हो सकी। 1831 में हैजेसल उनकी मौत हो गई।
ओह।
उनकी पत्नी थी मारी वॉन ब्रूहल, उन्होंने उनके जो अधूरे नोट्स थे, विचार थे, उनको संभाला और 1832 में छपवाया।
तो उनकी पत्नी का भी बड़ा योगदान रहा।
बहुत बड़ा। और शायद इसीलिए, क्योंकि ये अधूरी रह गई, ये किताब हमें सीधे सीधे जवाब नहीं देती, ये हमें ज्यादा गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करती है ना।
बिल्कुल सही, ये कोई रेसिपी बुक नहीं है।
हाँ, अब किताब पर आते हैं। पहली बात जो समझनी जरूरी है, ये कोई युद्ध जीतने के 10 आसान तरीके टाइप की गाइड बुक नहीं है।
बिल्कुल नहीं।
ये युद्ध का जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है, उसे समझने की एक गहरी फिलोसॉफिकल कोशिश है।
हाँ, इसका मकसद कमांडरों को रटी रटाई चीजों से हटाकर हालात के हिसाब से सोचने वाला एक फ्लेक्सिबल विचारक बनाना है।
क्लॉज़विट्ज़ का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। वो पहले युद्ध को उसके एक्सट्रीम रूप में देखते हैं, सैद्धांतिक रूप में।
हाँ, जिसे वो निरपेक्ष युद्ध या एब्सोल्यूट वॉर कहते हैं।
हाँ, जहां हिंसा का मकसद बस दुश्मन को पूरी तरह कुचल देना है, कोई रोक टोक नहीं, एक तरह का एक आइडियल मॉडल।
लेकिन वो फौरन हमें जमीन पर ले आती हैं। वो कहती हैं कि असल दुनिया का युद्ध, जिसे वो वास्तविक युद्ध या रियल वॉर कहती हैं, वो हमेशा इस एक्सट्रीम से अलग होता है।
क्यों? ऐसा क्यों?
क्योंकि असल युद्ध हमेशा राजनीति के लक्ष्यों से बंधा होता है, उसमें इंसानी गलतियां होती हैं, किस्मत का खेल होता है, और हाँ, वो चीज घर्षण,
फ्रिक्शन।
हाँ, वो फ्रिक्शन हमेशा मौजूद रहता है। यही घर्षण है जो कागज पर बनी योजनाओं और जमीनी हकीकत के बीच का फासला पैदा करता है।
किताब में ऐसे कई और पहलू हैं, जैसे रक्षा और हमले का एनालिसिस।
हाँ, अच्छे लीडरशिप के गुण, जिसे वो सैन्य प्रतिभा कहती हैं।
सैनिकों और जनता का हौसला कितना जरूरी है, और वो दुश्मन की कमजोर नस,
गुरुत्वाकर्षण केंद्र,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाँ, उसे पहचानना। ये सब मिलकर मानवीय टकराव की एक रियलिस्टिक तस्वीर पेश करते हैं। चलिए, कुछ सबसे अहम विचारों को थोड़ा और खुरेदते हैं।
हाँ, जरूर।
शुरुआत उसी विचार से करते हैं जो शायद क्लॉज़विट्ज़ की सबसे बड़ी पहचान बन गया है। युद्ध है क्या? वो कहते हैं, युद्ध बल का एक कार्य है जिसका उद्देश्य शत्रु को हमारी इच्छा पूरी करने के लिए विवश करना है। सिंपल। लेकिन इससे भी ज्यादा क्रांतिकारी है उनका ये कहना
कि युद्ध अन्य साधनों द्वारा राजनीति की निरंतरता मात्र है।
हाँ, ये सुनने में शायद आसान लगे, पर ये सोच उस जमाने के लिए बहुत नई थी।
हाँ, ये वाक्य ना अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। इसका मतलब है कि युद्ध कोई ऐसी चीज नहीं है जो राजनीति के फेल होने पर अचानक शुरू हो जाती है, बल्कि ये राजनीति को ही आगे बढ़ाने का एक और तरीका है, बस जरा ज्यादा हिंसक तरीका है।
जैसे डिप्लोमेसी होती है, इकोनॉमिक सैंक्शंस होते हैं।
बिल्कुल, वैसे ही युद्ध भी एक पॉलिटिकल टूल है, और इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि मिलिट्री के जो फैसले हैं वो हमेशा पॉलिटिकल लक्ष्यों के नीचे होने चाहिए,
अधीन होने चाहिए।
हाँ, सेना को ये तय नहीं करना चाहिए कि युद्ध क्यों लड़ा जा रहा है, ये काम सरकार का है, राजनीति का है।
इस जटिल चीज युद्ध को और बेहतर समझने के लिए क्लॉज़विट्स ने कमाल का फ्रेमवर्क दिया, जिसे वो कहते हैं त्रिमूर्ति, ट्रिनिटी।
हाँ, ये ट्रिनिटी या त्रिमूर्ति युद्ध के स्वभाव को पकड़ने की एक बहुत अच्छी कोशिश है। इसके तीन जरूरी तत्व हैं जो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।
कौन कौन से हैं वो तीन?
देखिए, पहला कोना है आदिम हिंसा, घृणा, शत्रुता। ये जुड़ा है लोगों की भावनाओं से।
अच्छा।
युद्ध में गुस्सा, नफरत, जोश, ये जो अतार्किक चीजें हैं ना, ये बहुत मायने रखती हैं। ये जनता का पहलू है, कह सकते हैं। दूसरा कोना है संयोग और संभावना का खेल। ये सेना और कमांडर का एरिया है। यहाँ हिम्मत, क्रिएटिविटी और हाँ, किस्मत का बड़ा रोल होता है।
अनिश्चितता वाला।
हाँ, यहाँ अनिश्चितता बहुत होती है। और तीसरा कोना है नीति के साधन के रूप में अधीनता। ये सरकार का तर्कसंगत पहलू है।
रैशनल।
हाँ, रैशनल। युद्ध क्यों लड़ा जा रहा है, क्या हासिल करना है, ये सब सोच समझ कर तय होता है। ये कारण और लक्ष्य का क्षेत्र है। क्लॉज़विट्स कहती है कि हर युद्ध इन तीनों का, यानी भावना, संयोग और तर्क का एक अलग मिक्सचर होता है।
दिलचस्प है।
हाँ, कभी भावनाएं हावी होती हैं, कभी तर्क। इसे समझना किसी भी संघर्ष को समझने के लिए बहुत जरूरी है।
और ये हमें वापस लाता है उस सिद्धांत और असलियत के फर्क पर।
हाँ,
क्लॉज़विट्स ने निरपेक्ष युद्ध की कल्पना की जहां हिंसा एकदम चरम पर हो,
लेकिन फिर समझाया कि वास्तविक युद्ध हमेशा उससे कम क्यों होता है। एक वजह तो राजनीति हो गई,
जो लिमिट लगाती है।
हाँ, और दूसरी बड़ी वजह है घर्षण, फ्रिक्शन।
ये घर्षण का आइडिया वाकई बहुत जमीनी है। क्लॉज़विट्स का वो मशहूर कोट याद आता है?
कौन सा? युद्ध में सब कुछ बहुत सरल है, लेकिन सबसे सरल चीज भी मुश्किल है।
हाँ, बिल्कुल। नक्शे पे देखो तो सेना को नदी पार कराना कितना आसान लगता है ना।
हाँ, बस एक तीर बना दो।
लेकिन असल में पुल टूट सकता है, दुश्मन घात लगा सकता है, सप्लाई देर से पहुंच सकती है, सैनिकों का हौसला,
मौसम खराब हो सकता है।
हाँ, ये छोटी छोटी अनगिनत दिक्कतें ही घर्षण हैं।
और इसी घर्षण से पैदा होता है वो युद्ध का कुहासा,
फॉग ऑफ वॉर।
फॉग ऑफ वॉर यानी युद्ध के मैदान में फैली अनिश्चितता, जानकारी की धुंध।
हाँ, कमांडर को अक्सर इसी धुंध में बिना पूरी तस्वीर जाने बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। ये चीज युद्ध को किसी लैब एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल अलग बना देती है।
और इसी अनिश्चितता और घर्षण से निपटने के लिए ही रणनीति यानी स्ट्रैटेजी इतनी जरूरी हो जाती है।
बिल्कुल।
क्लॉज़विट्स के लिए रणनीति सिर्फ लड़ाइयां जीतना नहीं है।
नहीं,
बल्कि युद्ध के उद्देश्य के लिए लड़ाइयों का उपयोग करना है।
अच्छा, मतलब अलग अलग लड़ाइयों को बड़े पॉलिटिकल लक्ष्य से कैसे जोड़ा जाए।
एग्जैक्टली, यहीं पर वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र श्वेरपुंक्ट का जरूरी विचार लाती हैं।
श्वेरपुंक्ट।
हाँ हाँ, ये दुश्मन की शक्ति का वो मेन सोर्स या सेंटर पॉइंट है जिस पर हमला करने से दुश्मन की लड़ने की इच्छा या क्षमता सबसे ज्यादा टूटेगी।
ये क्या हो सकता है? सेना।
हाँ, ये दुश्मन की सेना हो सकती है, उसकी राजधानी हो सकती है, कोई जरूरी सहायक देश हो सकता है, या कभी कभी उसकी अर्थव्यवस्था या लोगों का मनोबल भी।
इसे सही पहचानना अच्छी स्ट्रैटेजी की पहली शर्त है।
बिल्कुल। अब आते हैं उस विचार पर जो शायद सुनने वालों को सबसे ज्यादा चौंकाएगा।
कौन सा?
क्लॉज़विट्स का मानना था कि रणनीतिक तौर पर रक्षा, डिफेंस, हमले, अटैक से ज्यादा मजबूत होती है।
हाँ? ये कैसे हो सकता है? आमतौर पे तो हम अटैकर को ही ज्यादा ताकतवर समझते हैं।
हाँ, ये थोड़ा उल्टा लगता है ना, खासकर नेपोलियन के जमाने में जब हर कोई हमले की ही बात करता था।
सही कहा।
लेकिन क्लॉज़विट्स का तर्क बहुत गहरा है। वो कहती है कि जो डिफेंड कर रहा है वो अपनी जानी पहचानी जमीन पर लड़ता है।
हाँ ये तो है।
उसे लोकल मदद मिल सकती है, उसकी सप्लाई लाइन छोटी होती है और वो दुश्मन की गलतियों का इंतजार कर सकता है।
जबकि हमलावर,
हमलावर जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो अपनी सप्लाई लाइन से दूर होता जाता है, उसे जीते हुए इलाके पर कब्जा रखना पड़ता है, उसके सैनिक थकते हैं।
हाँ, लॉजिस्टिक्स का मसला बढ़ जाता है।
बिल्कुल, और एक पॉइंट आता है जिसे क्लॉज़विट्ज़ पराकाष्ठा बिंदु, कुलमिनेटिंग पॉइंट ऑफ अटैक कहती हैं, जहां हमलावर अपनी ताकत की लिमिट पर पहुंच जाता है और सबसे ज्यादा कमजोर होता है।
अच्छा, और यहीं पर डिफेंडर को मौका मिलता है।
हाँ, यहीं रक्षक को पलटवार का सबसे अच्छा मौका मिलता है। तो रक्षा का मतलब सिर्फ बैठे रहना नहीं है, बल्कि दुश्मन को थकाकर सही टाइम पे निर्णायक चोट करना है।
मतलब ये नहीं कि हमला कभी करना ही नहीं चाहिए।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जीत के लिए हमला जरूरी हो सकता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हमला ज्यादा रिस्की और मुश्किल काम है।
इन सभी विचारों को समेटते हुए क्लॉज़विट्ज़ युद्ध योजनाओं, वॉर प्लान्स की बात करते हैं।
हाँ, और वो जोर देती हैं कि कोई भी वॉर प्लान हवा में नहीं बनना चाहिए, उसका सीधा कनेक्शन पॉलिटिकल लक्ष्य से होना चाहिए।
फिर से वही बात।
हाँ, घूम फिरकर वहीं आते हैं। सबसे पहला सवाल ये पूछना है, हम ये युद्ध लड़ क्यों रहे हैं? क्या हमें दुश्मन को पूरी तरह मिटाना है या बस कोई लिमिटेड गोल हासिल करना है?
और प्लान इसी सवाल के जवाब से शुरू होना चाहिए।
बिल्कुल, राजनीति पहले, मिलिट्री एक्शन बाद में।
तो अगर हम इन सब बातों का सार निकालें तो कुछ मेन मैसेजेस क्या निकलते हैं?
पहला और शायद सबसे जरूरी,
राजनीति ही मालिक है,
है ना?
हाँ, मिलिट्री एक्शन सिर्फ एक टूल है, एंड नहीं। अगर आपकी मिलिट्री जीत आपके पॉलिटिकल गोल को पूरा नहीं करती तो वो जीत बेकार है।
सही बात। दूसरा मैसेज ये है कि युद्ध कोई मशीन नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स मानवीय गतिविधि है। वो त्रिमूर्ति वाली बात, भावना, संयोग, तर्क, फिर घर्षण, युद्ध का कुहासा, हौसला, लीडरशिप, ये सब दिखाते हैं कि युद्ध कितना अनप्रिडिक्टेबल और इंसानी भावनाओं से भरा होता है। यहाँ मैथमेटिकल प्रिसिजन की उम्मीद करना बेकार है।
तीसरा, वो चौंकाने वाली बात, रक्षा में छिपी हुई ताकत।
हाँ,
हमेशा हमला ही बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। कभी कभी टीके रहना, इंतजार करना, सही मौके का वेट करना ज्यादा असरदार रणनीति हो सकती है। ये बात शायद बिजनेस या पर्सनल लाइफ की चुनौतियों पर भी लागू होती है।
हाँ, हो सकती है। और चौथा, सिद्धांत और असलियत के बीच का फासला। कागज पर प्लान बनाना जरूरी है, लेकिन असल दुनिया हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती, इसलिए प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी और बदलते हालात के हिसाब से ढलने की क्षमता ज्यादा जरूरी है।
क्लॉज़विट्ज़ की किताब ऐसे विचारों से भरी है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। कुछ सबसे यादगार कोटेशंस तो अब तक हमारी बातचीत में आ ही गए हैं, जैसे
वो पहला वाला, युद्ध अन्य साधनों द्वारा राजनीति की निरंतरता मात्र है।
हाँ, ये इतनी बार दोहराया जाता है क्योंकि ये सच में बुनियाद है।
हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी संघर्ष में, चाहे वो जंग हो या ऑफिस की पॉलिटिक्स, हमारा आखिरी मकसद क्या है ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। साधन को साध्य पर हावी नहीं होने देना चाहिए।
दूसरा, वो कथन जो जमीनी हकीकत दिखाता है।
युद्ध में सब कुछ बहुत सरल है, लेकिन सबसे सरल चीज भी मुश्किल है।
हाँ, ये घर्षण का निचोड़ है ना?
बिल्कुल, यह हमें सिखाता है कि चीजें हमेशा उम्मीद से ज्यादा पेचीदा होते हैं और हमें रुकावटों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सिर्फ युद्ध नहीं, किसी भी बड़े काम पर लागू होता है।
और एक और जो शायद हर लीडर को याद रखना चाहिए।
कौन सा?
कोई भी समझदार व्यक्ति युद्ध तब तक शुरू नहीं करेगा, या यूं कहें, कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा जब तक कि उसके मन में ये स्पष्ट ना हो कि वो उससे क्या हासिल करना चाहता है और उसे कैसे संचालित करने का इरादा रखता है।
क्या बात है, मतलब बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा कदम उठाना बेवकूफी है।
हाँ, लक्ष्य क्या है और उसे पाने का रास्ता क्या होगा, ये क्लियर होना चाहिए, चाहे आप देश चला रहे हों, कंपनी चला रहे हों या अपना घर।
बिल्कुल, और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये विचार सिर्फ किताबों या आर्मी हेडक्वार्टर्स तक सीमित नहीं है, इनकी गूंज हमें आज की दुनिया में भी सुनाई देती है, जैसे बिजनेस और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में।
हाँ बिल्कुल, सोचिए एक कंपनी जो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, ये उसके मिलिट्री कार्रवाई हो गई। उसे ये देखना होगा कि ये उसके बड़े लक्ष्य से कैसे जुड़ा है, जैसे मार्केट शेयर बढ़ाना, ये उसकी राजनीति हो गई।
सही।
या फिर कॉम्पिटिटर कंपनी की असली ताकत क्या है, उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्या है, ब्रांड है, टेक्नोलॉजी है या कुछ और उस पर कैसे असर डाला जाए।
और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आने वाली रुकावटें, सप्लाई चेन में देरी, बजट की कमी, ये सब घर्षण ही तो है।
बिल्कुल, इनसे निपटने के लिए फ्लेक्सिबल प्लान चाहिए।
और राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तो ये और भी सीधे लागू होते हैं। कोई भी फोर्स इस्तेमाल करने से पहले ये सोचना कि हमारा असली पॉलिटिकल मकसद क्या है, क्या वह हासिल किया जा सकता है और क्या ये कदम उस मकसद को पूरा करेगा।
कहीं ऐसा तो नहीं कि हम निरपेक्ष युद्ध के रास्ते पर निकल पड़े जबकि लक्ष्य तो बहुत सीमित था।
हाँ, ये सवाल क्लॉजविट्स के जमाने में जितने जरूरी थे आज भी उतने ही हैं।
यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ के फैसलों में भी ये सोच मदद कर सकती है। करियर बदलना है, कहीं इन्वेस्ट करना है, हम अक्सर अधूरी जानकारी कुहासे के साथ फैसले लेते हैं।
लेते ही हैं।
क्लॉजविट्स हमें याद दिलाते हैं कि एनालिसिस करो, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करो, लेकिन हमेशा याद रखो कि चीजें प्लान के मुताबिक नहीं भी जा सकती। घर्षण, इसलिए लचीलापन जरूरी है।
अडैप्टेबिलिटी।
हाँ, अगर मुझसे पूछा जाए कि इस पूरी चर्चा में सबसे ज्यादा क्या याद रहा, तो वो है रक्षा का हमले से ज्यादा मजबूत होना।
अच्छा।
हाँ, ये हमारी जो नॉर्मल सोच है उसको चैलेंज करता है और हमें किसी भी सिचुएशन के दोनों पहलुओं पर गौर करने को कहता है।
और मेरे लिए वो राजनीति का हमेशा सबसे ऊपर होना, ये आइडिया कि आप जो भी कर रहे हैं, चाहे वो युद्ध हो, बिजनेस हो या कोई सोशल वर्क, उसका एक क्लियर क्यों होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए जो आपके क्या को गाइड करे।
सही बात है, बिना मकसद की मेहनत अक्सर बेकार जाती है।
बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर ऑन वॉर हमें ये नहीं बताती कि क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाती है कि संघर्ष और रणनीति के बारे में कैसे सोचना है। ये कोई रूल्स की किताब नहीं है, बल्कि सोच को शार्प करने वाला एक टूल है। ये बातें हैं लक्ष्य की स्पष्टता, अनिश्चितता को एक्सेप्ट करना
और मानवीय भावनाओं और हौसले के महत्व को समझना।
और जाते जाते हम एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, क्या क्लॉजविट्स के इन 200 साल पुराने विचारों को आज के दौर में, चाहे वो देशों के बीच का तनाव हो, कंपनियों की कंपटीशन हो या यहाँ तक कि हमारे समाज में चल रही बहसें हों, उन पर लागू करने से हमें कोई नई समझ मिल सकती है?
सोचने वाली बात है। क्या ये नजरिया हमें दुनिया को थोड़ा अलग ढंग से देखने में मदद करता है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।